पृष्ठ संख्या 165, राजनीतिक स्थिति, मुख्य तत्व। कई अन्य देशों के समान जापान के राजनीतिक वातावरण में भी अनेक विरोधी शक्तियां एक ही स्थान पर एकत्र थीं और इनमें से प्रत्येक अनुभव प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। अन्य देशों के समान यहाँ भी विरोधी तत्वों की सापेक्षिक शक्ति में समय समय पर अंतर आता रहा। सत्ता कभी एक के हाथ में रहती तो कभी दूसरे के। इस निरंतर परिवर्तनशील राजनीतिक वातावरण के प्रमुख तत्व थे डाइट के अवर सदन के विभिन्न दल, स्थल एवं नौसेना, जो विभिन्न देशभक्त संस्थाओं से संबद्ध थी, सिविल नौकरशाही, अभिजात वर्ग जिसमें जेनेरो या वरिष्ठ राजमर्मज्ञ वर्ग भी सम्मिलित था, तथा जाइबात्सु, इनमें से कोई भी स्वयं में एक पूर्ण इकाई न था। प्रत्येक वर्ग में आंतरिक मतभेद था, लेकिन फिर भी प्रत्येक का अपना पृथक अस्तित्व था। भले ही आंतरिक रूप से कभी-कभी उनमें कुछ मतभेद हो, इन सबसे ऊपर तथा सिद्धांततः सभी दलगत संघर्षों से परे सम्राट का दर्जा था। उसी के नाम से शासन चलता था और आरंभिक शताब्दियों के समान इस समय भी नियंत्रण स्थापित करने के इच्छुक वर्ग सम्राट की मान्यता तथा समर्थन की अपेक्षा करते थे। आमतौर पर सम्राट देश के कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जिस किसी वर्ग का भी देश पर प्रभुत्व होता था वह राजा की ओर से बोलता था, लेकिन राजा को खुल्लम खुल्ला स्वयं कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना बुरा माना जाता था। वह अपने प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से ही प्रयोग कर सकता था। डाइट के अवर सदन के द्वारा लोकतंत्रीय शक्तियों का सरकार पर नियंत्रण का प्रयत्न। सन 1894 के बाद की आधी शताब्दी के अधिकांश राजनीतिक इतिहास की प्रधान विशेषता यह रही कि डाइट का अवर सदन वहां की सरकार पर कुछ वैसा ही नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा जैसा ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने स्थापित किया था। इस समय विचाराधीन प्रश्न पश्चिम के एंग्लो सैक्सन की लोकतंत्रीय विचारधारा की विजय था। यह इस संघर्ष के विस्तृत विवेचन पर जाना उचित न होगा, क्योंकि यह काफी जटिल और उलझा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न कभी भी पूर्ण स्पष्ट नहीं रहा। दलबंदी तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने, जैसा कि इन परिस्थितियों में अन्य देशों में भी हुआ, इस प्रश्न को और अधिक उलझा दिया था। उत्तरदायी संसदीय सरकार के विरोध में मुख्य रूप से सेनाओं के लोग थे। सैनिक वर्ग के ये लोग मेजी से पूर्व की सामंतवादी जापानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें योरितोमो काल से सेना का प्रभुत्व रहा था। नई व्यवस्था ने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। बहुत समय से चले आ रहे अपने तोकुगावा विरोधियों को विपर्यस्त करके पश्चिमी क्षेत्रों की प्रमुख जातियों ने स्थल सेना एवं नौसेना में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इनमें से स्थल सेना में चोसू का और नौसेना में सत्सुमा का प्रभुत्व था। 1894 से 95 के चीन जापान युद्ध के कारण इनमें आपस में एक अस्थायी समझौता हो गया। इस समय राष्ट्र को एक बाहरी शत्रु का सामना करना था और इसलिए कुछ समय के लिए आंतरिक विवादों को भुला दिया गया तथा देश एकनिष्ठ होकर युद्ध के अनुष्ठान में जुट गया। फलस्वरूप जापान की स्थल एवं नौसेना की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बाहरी खतरे को अंशतः हटा देने के पश्चात संभवतः विजय के कारण जो शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो गया, उसने वहां शीघ्र ही संसदीय चुनावों की मांग को फिर से ताजा कर दिया। सन 1896 के अंत में मंत्रिमंडल के युद्धकालीन नेता ईतो ने त्यागपत्र दे दिया। संविधान का निर्माण कुछ ऐसे तरीके से किया गया था कि अवर सदन अपनी इच्छा को पूर्णतः स्वीकार करने पर बाध्य नहीं कर सकता था, लेकिन साथ ही सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे संतुष्ट करना आवश्यक था। किसी विकट स्थिति को सुलझाने के लिए अवर सदन के सदस्यों को या तो पद का लालच देकर या रिश्वत देकर मनाना पड़ता। अवर स्वतंत्रता दलों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन कुछ सदस्य इस भ्रष्टाचार से मुक्त थे। मंत्रिमंडल का निर्माण एक ओर अवर सदन के विभिन्न दलों द्वारा तथा दूसरी ओर अन्य तत्वों, मुख्यतः सैन्य सेवाओं के बीच समझौते द्वारा होता था। चीन जापान युद्ध के बाद की दशाब्दी में कुछ साल के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि ईतो ने संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। ईतो की सलाह पर सर्वप्रथम सम्राट ने ओकुमा और इतागाकी को, जो दलों के नेता थे, मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वे इस कार्य में असफल रहे तथा जब सत्चो यानी सत्सुमा और चोसु अर्थात सशस्त्र सेना के नेतृत्व में निर्मित मंत्रिमंडल भी कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात विफल हो गया, तो ईतो ने स्वयं उस दल का नेतृत्व ग्रहण कर लिया जो उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पक्ष में था, लेकिन वह भी असफल रहा। इसके बाद कई अन्य मंत्रिमंडल बने, जिनमें से कुछ में सेना की प्रमुखता थी और एक में मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के पद पर ओकुमा था, जो उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पक्ष में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के कुछ वर्षों में ऐसा प्रतीत होता था कि लोकतंत्रीय शक्तियां विश्व पर हावी हो रही है। इस विश्व युद्ध का परिणाम लोकतंत्र की विजय के रूप में सामने आया। जापान ने, जो विश्व की प्रचलित प्रवृत्तियां से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, अपने आप को आवश्यकता के अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया। सन 1918 में हारा जापान का प्रधानमंत्री बना। उसका जन्म जनसाधारण वर्ग में हुआ था और इस वर्ग का वह प्रथम व्यक्ति था जो इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। यद्यपि सन 1921 में उसकी हत्या तथा फलस्वरूप मंत्रिमंडल का पतन लोकतंत्र की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, लेकिन 1925 में सर्वात्रिक पुरुष मताधिकार स्वीकार कर अवर सदन के लिए निर्वाचन के आधार को और अधिक व्यापक बनाया गया। मताधिकार को व्यापक बनाने के साथ ही अनेक नए दलों का उदय हुआ, जो अधिकांशतः अतिवादी समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थक थे तथा आमूल परिवर्तनवादी श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें अत्यल्प संख्या में कुछ विचारशील लोग भी थे। इन चुनावों में जिन दलों को भारी बहुसंख्या में मत प्राप्त हुए थे, अधिकांशतः उन वर्गों में से थे जो अपने को उन पूर्वजों का वंशज मानते थे, जिन्होंने सबसे प्रारंभ में सरकार के लिए संघर्ष किया था। इनमें से एक था सियुकाई, जो मित्सुई और भश्विमी वर्ग से संबद्ध था, और दूसरा मिन सेइतो था, जो मित्सुविशी तथा औद्योगिक वर्ग से निकटतया संबद्ध था। पृष्ठ संख्या 167। सशस्त्र सेना की बढ़ती हुई शक्ति का संकीर्ण राष्ट्रवादी तत्वों का उदय। लोकतंत्र की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जो समय के साथ साथ और तीव्र होती गई। मूलतः इसी के फलस्वरूप जापान ने पुनः अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाई, और एक बार इसे स्वीकार करने के पश्चात युद्धों की आवश्यकताओं ने इस कार्यक्रम को और अधिक पोषित किया। युद्ध में व्यस्त सेनाओं ने, विशेष रूप से अस्थल सेना ने, कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं का परित्याग नहीं किया। राष्ट्रवादी रोष तथा असंतोष ने, जिसने राष्ट्रीयता को और अधिक उग्र किया, इनके उद्देश्यों को और अधिक दृढ़ किया। बहुत से लोग अभी तक पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा जापान की जातीय समानता के सिद्धांत के अनुमोदन की मांग को अस्वीकार किए जाने के कारण हुए पराभव को नहीं भुला पाए थे। जापान की जनता अमेरिका में जापानियों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार से रुष्ट थी तथा सन 1924 में अमेरिका ने नागरिकता प्राप्त करने के अयोग्य विदेशियों पर प्रतिबंध लगाकर भद्र जनोचित समझौते का जो अनादर किया था, उस पर जापानियों ने आपत्ति की। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका द्वारा जापान का उनके बराबर नौसेना के निर्माण के सिद्धांत को मानने से इनकार करना तथा सन 1930 में लंदन के आयुध सम्मेलन में जापान के पक्ष में थोड़े बहुत परिवर्तन सहित वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अनुपात को बनाए रखने का यूरोपीय राष्ट्रों का आग्रह अनेक जापानियों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक प्रतीत हुआ। सन 1929 के पश्चात विश्व जनीन आर्थिक मंदी से संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अन्य प्रमुख देशों की अपेक्षा जापान अधिक शीघ्रता से इस मंदी के प्रभाव से मुक्त हो गया, क्योंकि उसे अपने सस्ते माल की खपत के लिए कुछ पूर्वी देशों में बाजार उपलब्ध हो गए और पूर्वी देशों के लोगों की क्रय शक्ति में कमी आ जाने के कारण वे पश्चिमी देशों में निर्मित महंगी वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ थे। लेकिन फिर भी इस मंदी का कुप्रभाव वहां के कुछ वर्गों पर, विशेषतः कृषक वर्ग पर, बहुत अधिक पड़ा, जिनकी आजीविका कच्चे रेशम के उत्पादन पर निर्भर थी। अब चूंकि अमेरिका में भी मंदी के कारण रेशम के मूल्यों में कमी आ गई थी, इसलिए जापान में हजारों लोगों को कष्ट उठाना पड़ा और उन्होंने अपने इस संकट की सूचना नौसैनिक सेवा में काम कर रहे अपने पुत्रों को दी। लोगों ने सीधे उस फैशन को, जिसने जापान का पश्चिमीकरण किया था, तथा उन वर्गों को जो पश्चिमी तौर तरीकों के कायल थे, इस संकटपूर्ण स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया। पृष्ठ संख्या 168। असंतोष के इन विभिन्न कारणों के फलस्वरूप अनेक जापानियों ने यह कहना शुरू किया कि पश्चिमी देशों के लिए प्रवेश का मार्ग खोलकर और पश्चिमी पूंजीवादी और संसदीय संस्था को स्वीकार कर जापान ने भयंकर भूल की है। अधिकांश असंतुष्ट क्रांतिकारी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं थे कि वस्तुतः उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, लेकिन वे उन राजनीतिज्ञों और अधिकारियों का मूलोच्छेदन करने को तैयार थे जिन्होंने जापानी परंपराओं से स्पष्ट रूप से विश्वासघात किया था, तथा वे सशस्त्र सेनाओं को अपना सहयोग देने को तैयार थे जो राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ ऐसे ढंग से करना चाहते थे जिससे आर्थिक संकट का अंत हो सके। एक राजाज्ञा द्वारा सशस्त्र सेनाओं की स्थिति को और दृढ़ बना दिया गया, जिससे उन्हें अधिक लाभपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई। सन 1889 की राजाज्ञा द्वारा मंत्रिमंडल के संगठन के फलस्वरूप युद्ध एवं नौसेना के मंत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गोपनीय सैन्य मामलों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री से बिना मिले ही सीधे राजा से मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सन 1898 में आधुनिक सेना के मुख्य निर्माता राजकुमार यामागाता ने इस आशंका से कि कहीं संसदीय सरकार के संघर्ष में सशस्त्र सेना का नियंत्रण असैनिक अधिकारियों के हाथ में न आ जाए, एक और राजाज्ञा जारी करवाई, जिनके अनुसार युद्ध एवं नौसेना के मंत्रियों के पद पर केवल सक्रिय सेवा में कार्य करने वाले जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एडमिरल तथा वाइस एडमिरल ही नियुक्त हो सकते थे। इसका अभिप्राय यह था कि यदि स्थल एवं नौसेना के अधिकारी चाहते तो वे मंत्रिमंडल के निर्माण में बाधा उपस्थित कर सकते थे अथवा मनचाही शर्तें मानने को बाधित कर सकते थे, क्योंकि किसी भी सेवा का कोई उच्च पदाधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों तथा प्रधान सेनापति की अनुमति के बिना मंत्री के पद को स्वीकार नहीं कर सकता था। सन 1912 में इस राजाज्ञा में कुछ ढील दे दी गई और अब सक्रिय सेवा के अलावा सेवानिवृत्ति अधिकारी भी इस पद पर नियुक्त हो सकते थे, लेकिन इससे आधारभूत स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसके अलावा देश में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की लहर ने सेनाओं को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि स्थल एवं नौसेना ही राष्ट्र की आशाएं थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशभक्त संस्थाओं ने भी सशस्त्र सेनाओं को दृढ़ किया। इन विभिन्न संस्थाओं में से कुछ ऐसी थी जिनके सदस्य केवल भूतपूर्व सैनिक थे। ऐसे ही एक संगठन की सदस्य संख्या 30 लाख के लगभग बताई जाती है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अनेक युवा संगठन देश में सैनिक प्रशिक्षण एवं सैन्य भावना के प्रसार के लिए कार्य कर रहे थे। कुछ संस्थाओं ने आतंकवादी उपायों को अपनाने का भी समर्थन किया। जब जनसाधारण वर्ग के लोग सेना में उच्च पदों को प्राप्त करने लगे तो सेना के नेतृत्व का स्वरूप बदल गया। सामंत प्रथा के उन्मूलन तथा सैनिक अभिजात वर्ग के स्थान पर राष्ट्र के सभी वर्गों के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू करने की एक दशाब्दी के बाद भी स्थल सेना एवं नौसेना का नियंत्रण चोसू और सत्सुमा के भूतपूर्व समुराई के हाथ में रहा। रूस जापान युद्ध के बाद तक यह उन्हीं के हाथ में बना रहा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इस परंपरा के अधिकारी लुप्त होते गए, और जिन लोगों ने इनका स्थान ग्रहण किया वे समुराई वर्ग में से न थे। सैनिक पदों के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता था वह सैन्य ज्ञान तक ही सीमित था। इसमें विस्तृत विश्व के बारे में अत्यल्प या बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी जाती थी, और न ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कुछ बताया जाता था। जैसे ही सेना का नियंत्रण इन लोगों के हाथों में गया, दृष्टिकोण भी अधिकाधिक संकुचित, अतिराष्ट्रवादी, आक्रामक तथा ऐसी अंधराष्ट्रभक्ति की भावना से अनुप्राणित हो गया जो अत्यधिक संक्रामक सिद्ध हुए। कुछ विशिष्ट व्यक्ति अत्यधिक मितवैयता से जीवन यापन करते थे तथा धन से घृणा करते थे, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे राष्ट्र के प्रतीक, सम्राट पद के प्रति अगाध एवं दृढ़ निष्ठा के जीते जागते उदाहरण हो। आरंभ में नौसेना में यह प्रवृत्ति उतनी प्रमुख न थी, क्योंकि सेना की इन शाखा के भावी अधिकारियों का शिक्षण स्थल सेना के छात्रों की अपेक्षा अधिक व्यापक होता था, और अपनी कार्यविधि में स्थल सेना के अधिकारियों की अपेक्षा नौसेना के अधिकारियों को दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा के अधिक सुयोग मिलते थे तथा उनका अन्य देशों के साथ अधिक संपर्क होता था। अंततः नौसेना में भी कुछ संकुचित दृष्टिकोण वाले ऐसे अधिकारी उच्च पदों पर आने लगे जो पहले स्थल सेना में कार्य कर चुके थे। स्थल सेना एवं नौसेना ने राजनीतिक हत्याओं के द्वारा अपने नियंत्रण को और दृढ़ बनाया। जापान की राजनीति में हत्या के साधन का उपयोग कोई नई चीज न थी। 47 रूनिन इसका उत्कृष्ट उदाहरण था, जो कथा और नाटक दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध था। इसमें हत्यारों को गौरव प्रदान किया गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब कुछ लोगों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर या तो अधिकारियों की हत्या कर दी या उन्हें घायल कर दिया। लोकमत उन्हें सामान्यतः पथभ्रष्ट मानते हुए भी सदाशयतापूर्ण या निर्दोष समझता था और उनका आदर करता था। सन 1930 के बाद के दशक में अनेक उच्च अधिकारियों की हत्याएं हुई, और इनमें से कुछ सर्वाधिक कुख्यात अधिकारियों की हत्या सैनिक अधिकारियों द्वारा की गई। सन 1931 और 32 के बाद जब जापान मंचूरिया में अपनी कार्रवाइयों तथा राष्ट्र संघ की उपेक्षा के द्वारा पश्चिमी देशों के अधिकाधिक विरुद्ध हो गया और युद्ध की मनोवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उसी समय वहां इन हत्याओं की एक लहर सी व्याप्त हो गई। सन 1930 में मिनसेइतो ने नेता तथा प्रधानमंत्री हामागुची की एक उन्मत्त युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। सन 1932 के आरंभ में एक भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा मित्सुई कंपनियों के मैनेजर की हत्या कर दी गई। 15 मई 1932 को स्थल एवं नौसेना के कुछ युवा अधिकारियों के एक वर्ग ने टोक्यो में आतंक फैला दिया तथा प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। इन हत्यारों पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया गया और उन्हें अपने पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए लंबे भाषण देने की भी अनुमति दी गई। इन भाषणों में उन्होंने देश में विद्यमान कुछ प्रवृत्तियों की कटु निंदा की। कई जापानियों की दृष्टि में वे देशभक्त थे और उन्हें बहुत हल्की सजाएं दी गई। अगस्त 1935 में एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ने सैनिक मामलों के ब्यूरो के प्रधान एवं मेजर जनरल को मौत के घाट उतार दिया। उसका कथन था कि उसने यह कार्य दैवी प्रेरणा से देश की शोचनीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया, क्योंकि इस शासन में कृषक वर्ग निर्धन हो गया था, राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हो चुके थे, जनतंत्र की नींव कमजोर पड़ गई थी, और नौसैनिक परिसीमा समझौते के द्वारा सम्राट का अपमान किया गया था। इस बार हत्यारों को अपराधी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। लेकिन इस मुकदमे से एक बात स्पष्ट हो गई कि हत्यारे के साथ अनेक लोगों को सहानुभूति है, और वह ऐसे अधिकारियों के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो युवा अवस्था के अंतिम चरण पर है या युवा अवस्था पार कर चुके हैं और मध्य श्रेणी के पदों पर आसीन हैं। जैसे कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एवं कर्नल आदि। 26 फरवरी 1936 को और भी अधिक सनसनीखेज हत्याएं की गई। हाल ही में डाइट के अवर सदन के चुनाव में बहुसंख्या में मिनसेइतो वर्ग के उम्मीदवार चुने गए, जो फासिज्म तथा सैन्य शासन प्रणाली के विरुद्ध संसदीय प्रणाली के समर्थक थे। इसका परिणाम वही हुआ जिसकी आशा थी। लेफ्टिनेंटों और कैप्टनों के नेतृत्व में सैकड़ों सिपाहियों ने संसद भवन, युद्ध कार्यालय, राजधानी के पुलिस कार्यालय और एक होटल पर घेरा डाल दिया तथा उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके पश्चात उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बताया गया था कि मुट्ठी भर लोगों ने असंख्य व्यक्तियों की धन संपदा हड़प कर तथा नौसैनिक समझौतों के द्वारा साम्राज्य के सम्मान को क्षति पहुंचाई है। उन्होंने जेनरो यानी प्रवर राजमर्मज्ञों, बड़े बड़े पूंजीपतियों, सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों को इसका दोषी ठहराया। हिंसात्मक क्रांति के आतंक से राष्ट्र हिल उठा था। कुछ समय के लिए सेना की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और नागरिक अधिकारियों ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया।